पिछले दिनों एक दीनी फिक्री बहस में एक राय सामने आई, वो ये कि शरीयत के अंदर दो बुनियादी मौजूदात हैं, इबादात और मामलात। इबादात के अंदर जो इबादात का फॉर्मेट, शाकला, उनका जो हरकियात हैं वो भी मतलूब है और उसके अंदर एक हिकमत भी पाई जाती है, लेकिन मामलात के अंदर सरतसर हिकमत है जिसको पेश नज़र रख के आपने मामला करना है। तो एक मिसाल इसकी दी गई कि मसलन नकद के अंदर जो सूद हम लेते हैं, जिसको रबुल फजल कहा जाता है, हदीस में उसकी ममानियत आई है, तो इसमें शरीयत ने दोनों तरफ से जो फरीकैन हैं उन पर ज़्यादती ना हो, मामलात के अंदर इस हिकमत को पोशीदा किया है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीज़ों में उसकी इजाज़त दे दी है, तो गोया उनमें ये ज़्यादती नहीं होती। तो बयान करना ये मकसूद है कि मामलात में हिकमत होती है, उसकी मिसाल रबुल फजल, इस पर कोई तबसरा
नहीं। देखिए, हिकमत तो हर चीज़ में होती है, यानी इबादत में भी हिकमत होती है। अल्लाह ताला ने जगह जगह बताया है कि फ़लाँ इबादत क्यों मुकर्रर की गई, फ़लाँ क्यों मुकर्रर की गई, नमाज के बारे में बताया, ज़कात के बारे में बताया, रोज़े के बारे में बताया। हर चीज़ में हिकमत होती है, अल्लाह का कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं है। बाज़ मौक़ों पर अल्लाह ताला ख़ुद बयान कर देते हैं, बाज़ मौक़ों के ऊपर बड़ी बदी ही हकीकत होती है, हम खुद समझ लेते हैं। मामलात में भी अल्लाह ताला ने जहाँ कोई हुक्म दिया है, ज़ाहिर है मबनी पर हिकमत है, हिकमत के बगैर तो कोई चीज़ भी, अल्लाह ताला अलीम भी हैं, हकीम भी हैं, जो बात वो करते हैं उनके इल्म व हिकमत पर मबनी होती है। लेकिन जब वो कोई बात करते हैं तो या कुरान में करेंगे या सुन्नत में, उसको एक सुन्नत की हैसियत से जारी किया गया होगा, उसमें दोनों चीज़ें मतलूब होती हैं। यानी ये कि उसके पीछे मकसद क्या है, वो हासिल होना चाहिए, और दूसरे ये कि उसकी फॉर्म क्या मुकर्रर की गई है। जिस तरीके से आप अल्लाह को याद करने के लिए खड़े होते हैं, तो वहाँ अल्लाह की याद तो मतलूब ही है, वो बुनियाद है उसकी, लेकिन अल्लाह की याद का तरीका अल्लाह ने बताया है कि वो नमाज़ पढ़ना है, और नमाज़ पढ़ने का एक तरीका मुकर्रर कर दिया गया है। तो अब वो हिकमत या वो इल्लत या वो मकसद भी मतलूब है, और उसके साथ वो फॉर्म या वो हैत भी मतलूब है। उस तरह से जब वक्त आ जाएगा, यानी जोहर का वक्त आ जाएगा या फजर का वक्त हो जाएगा, तो उस तरीके से अल्लाह को याद करना मतलूब है। अगर कोई उस तरीके से याद नहीं करता तो अल्लाह की नाफरमानी करता है। अल्लाह ताला अलीम व हकीम भी हैं और उसके साथ बादशाह कायनात भी हैं, तो उन्होंने एक चीज़ की एक हैत, एक फॉर्म मुकर्रर कर दी है। पहले तो ये समझ लीजिए कि इबादात में भी, अब अगर इबादात में ये है तो जो दूसरे मामलात हैं उनमें भी यही सूरत है। मसलन निकाह का एक तरीका मुकर्रर कर दिया है, मिसाल के तौर पर तलाक देने के लिए एक तरीका मुकर्रर कर दिया है, ये भी बिल्कुल उसी तरह मुकर्रर किया है अल्लाह ताला ने जिस तरह के नमाज का तरीका मुकर्रर किया।
हालांकि वो इबादत तो नहीं है,
इबादत तो नहीं है, मामलात हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर किसी से बाज़ जराइम जिनकी सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं, वो जुर्म हो जाता है और हर लिहाज से वो आदमी सज़ा का मुस्तक हो जाता है, जुर्म की नौइयत और मुजरम के हालात किसी रियायत का तकाजा नहीं करते, ये सब बातें खुद अल्लाह ताला ने बता दी हैं, और फिर उसको सज़ा देनी है, तो उसके लिए जो सज़ा मुकर्रर की गई है वही देना होगी, क्योंकि वो अल्लाह की मुकर्रर करदा सज़ा है। तो ना मामलात के बारे में ये बात सही है, ना इबादात के बारे में सही है। इबादात में भी जहाँ अल्लाह ताला किसी चीज़ की हिकमत बयान करते हैं, उसकी इल्लत वाज़े होती है, वो इबादत किस चीज़ पर मबनी है उसको बयान किया जाता है, उसके साथ ही वो है वो फॉर्म भी उसी तरह मतलूब होती है, वरना उसको मुकर्रर करने की ज़रूरत ही क्यों है। यानी वो उस मौके के ऊपर ही छोड़ दिया जाता, सहाबा इकराम मुकर्रर कर लेते, अपने अपने तरीके से कर लेते। तो अल्लाह ताला जब मुतय्यन तौर पर किसी चीज़ की हैत, किसी चीज़ की फॉर्म मुकर्रर कर देते हैं तो वो मतलूब होती है, ख्वाह वो इबादात में हो ख्वाह वो मामलात में हो, दोनों चीज़ें समझ लें। अलबत्ता जब वो ये सब कर रहे होते हैं तो इसके साथ बाज़ ऐसे अहकाम देते हैं जो सरासर सद ज़रिया पर मबनी होते हैं। यानी एक कानून बताया जा रहा है, मिसाल के तौर पर तलाक का एक कानून है, आपको तलाक देने का हक किस तरह दिया गया है, ये हक हासिल किसको है, इसमें क्या चीज़ें हैं जो मुकर्रर कर दी गई हैं, वो एक पूरा का पूरा कानून होता है। इस कानून पर अमल करते वक्त बाज़ चीज़ें सदन लज़रिया कही जाती हैं, यानी असल कानून की के मकासद को महफूज करने के लिए, वो ख़ुद से आग सबाग से वाज़े हो जाता है कि असल मतलूब नहीं है। यानी अगर किसी मौके के ऊपर उनसे मुख्तलिफ कोई रास्ता हमारे सामने आ जाए तो हम उसको इख्तियार कर लेंगे, लेकिन इसके दलायल आपको ख़ुद उस हुक्म से देने होते हैं। यानी ये कोई कायदा कुलिया नहीं है जिसको बनाकर आप नाफिज कर देंगे, आप उस हुक्म के अंदर उतरेंगे, आप देखेंगे कि वहाँ क्या चीज़ है कि जो इस तरीके से बयान की गई है कि अगर اس کو آپ کسی دوسری صورت میں بھی حاصل کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پر اعتراض نہیں کریں گے.
کوئی مثال اگر اس کے اندر
جیسے عدت کے احکام ہے, خود واضح ہو جاتا ہے کہ عدت سے مقصود کیا ہے اور عدت کس علت پر مبنی ہے, یہ واضح ہو جاتا ہے. اب وہ چیز جہاں جہاں پہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ حکم میں بھی تبدیلی کر رہے ہیں. یعنی اگر یہ اس طرح کا تعبدی حکم ہوتا تو ہر حال میں مطلوب ہوتا, ہر حال میں آپ کو. اب یہ دیکھیے کہ اس میں حاملہ کی اور مقرر کر دی, اگر ملاقات نہیں ہوئی تو سرے سے اس کو ختم کر دیا, تو خود اس حکم کا مطالعہ بتا دیتا ہے کہ یہاں آپ کسی چیز کے معاملے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. یا دستاویز لکھنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح دستاویز لکھ لو, اس پر گواہ بنا لو. ظاہر ہے کہ وہ ساری بات جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ تمہارے مال کی حفاظت ہو جائے. تو اگر کسی موقع کے اوپر ہم محسوس کریں کہ اب لکھنے کی بجائے ایسا بندوبست ہو گیا ہے کہ جس سے کوئی خطرہ نہیں ہے نزاع کا, تو حکم کا منشا پورا ہو جائے گا. تو ایسی چیزیں پہلی بات یہ کہ صرف سد ذریعہ کے حکام میں ہوتی ہیں. دوسرے یہ کہ سد ذریعہ کے اس حکم میں بھی اگر کوئی فارم مقرر کی گئی ہے تو آپ کو خود اس فارم کے اندر سے استدلال کر کے بتانا پڑے گا کہ یہ جس علت پر مبنی ہے وہ یہ ہے, اور اس علت کا لحاظ اگر کر لیا گیا ہے تو فارم مطلوب نہیں ہے. یہ سب بھی آپ کو استدلال کرنا پڑتا ہے. تو گویا اصول کیا ہوا کہ آپ اللہ کی کتاب میں جائیں گے, آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جائیں گے, وہاں جا کے اس کا مطالعہ پیش کریں گے کہ دیکھیے یہ حکم ہے, یہ علت ہے, یہ اس پر مبنی ہے, اس پر مبنی ہو کر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایک حیت ایک فارم مقرر کر دی گئی ہے, اس میں یہ حصہ ہے کہ جس حصے میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر کے خود واضح کر دیا ہے کہ اس کی متبادل صورتیں بھی ہو سکتی ہیں, ایسے اس کو دیکھا جاتا ہے. علی الاطلاق ایسی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم اور شریعت کو معطل کر رہے ہیں, اس کی گنجائش نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے.